आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीक्षा है। स्टूडेंट्स, पिछले लेसन में हमने क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल के चैप्टर 3 को आधा पढ़ा था, जिसका नाम है डिस्कवरिंग टट, द सागा कंटिन्यूज। तो स्टूडेंट्स, मैं जल्दी से आपको लास्ट लेसन का एक छोटा सा रिकैप देती हूँ, जिसके बाद हम आज उस चैप्टर को आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि टट की मम्मी को 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने निकाला था, डिस्कवर किया था उन्होंने, और उन्होंने पाया था कि जो उसकी मम्मी है वो उसके कॉफिन से यानी ताबूत से बहुत बुरी तरह से चिपक गई है, जिसकी वजह से वो अलग नहीं हो पा रही है। अलग करने के लिए हॉवर्ड कार्टर ने काफ़ी सारे टेक्निक्स का यूज़ किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आखिर में फिर उन्होंने क्या किया कि उनके सारे जॉइंट्स काट दिए, यानी सर अलग कर दिया, हाथ अलग कर दिए, जिससे वो अलग करके उस ताबूत में से टट की मम्मी को निकाल सके। अब टट कौन था? टट एक बॉयश किंग था जो लगभग अपने टीन्स में फैरो बन गया था, यानी इजिप्ट में जो राजा होते हैं उन्हें फैरो कहते हैं, वो फैरो भी बन गया था और उसकी डेथ भी हो गई थी। और जो टट की मम्मी थी उसे बहुत ही अलग तरीके से प्रिजर्व किया गया था, उसे बहुत ही अलग तरीके से रखा गया था। जो उसका ताबूत था वो सोने का बना हुआ था, उसके साथ लिनन के अंडरगारमेंट्स थे, पीतल का लेजर था, ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, और बहुत सारी ज्वेलरी दफनाई गई थी। तो जो कार्टर ने किया उसकी वजह से टट की मम्मी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। अब उसमें काफ़ी सारे, आप ऐसे सोचिए कि बहुत कितने साल पुरानी, 3300 साल पुरानी हड्डियां हैं। अब उन्हें ऐसे काट पीट के, मान लो निकाल के, और फिर दोबारा से अरेंज किया जाएगा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ही। अब वो गड़बड़ हो चुकी थी, तो उसके पास जो ज़ाही हवास हैं उन्होंने जब दोबारा से इस मम्मी को स्कैन करने की, इस मम्मी में जो जो चीज़ें हैं उन्हें चेक करने की, जो जो राज छुपे हुए हैं उन्हें चेक करने की कोशिश की, तो उन्होंने पाया कि जो बॉडी की हालत है वो बड़ी ही ख़राब है। पहले के टाइम पे इस बॉडी का, इस मम्मी के एक्सरे करा जा चुका था, एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने एक्सरे किया था, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ फाइंडिंग्स आई नहीं। बस ये बात पता चली कि उसकी कुछ पसलियाँ गायब हैं। अब ज़ाही हवास जो है वो सीटी स्कैन करने वाले थे। सीटी स्कैन से होता क्या है कि काफ़ी सारे एक्सरेज निकलते हैं उसमें से, और उन सारे एक्सरेज को जोड़ा जाता है, और उसके बाद फिर पाया जाता है कि एक थ्री डायमेंशनल फिगर आ जाती है आपके सामने। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो इंसान आपके सामने आकर खड़ा हो गया है, ऐसी पिक्चर आपके सामने आ जाती है। तो बड़ा ही आसान होता है उससे कुछ चीज़ों को फाइंड करना। इसमें हमने ये भी देखा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कितना इस टाइम पे कितना प्रोग्रेस कर ली है, कितना इवॉल्व साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो चुका है। पहले के टाइम पे जो चीज़ें बिल्कुल ही नामुमकिन थी, अब उसे हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब जो सीटी स्कैन होने वाला था उसके बाद लोगों में ये क्यूरियोसिटी, ये जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि भाई ये सीटी स्कैन तो हम कर रहे हैं, क्या इससे हमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, जैसे कि किंग टट कितनी उम्र के थे जब उनकी डेथ हुई, और उनकी डेथ किस वजह से हुई। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर क्या मिलेंगे, क्योंकि ये एक मिस्ट्री बन के रह चुकी थी। तो अब जानना चाहते थे लोग कि अब इस सीटी स्कैन से क्या इन क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं। तो ये सीटी स्कैन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने स्टोरी को पढ़ लिया था, यहाँ तक हम इस चैप्टर को कवर कर चुके थे। बड़े माइन्यूटली हमने चीज़ों को देखा, हमने लास्ट लेसन में इजिप्शियन कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में भी डिस्कस किया था। उन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम चैप्टर को आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, मेरे साथ पेज नंबर 25 के सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पर चलिए, जहाँ से हम आज इस चैप्टर को कॉन्टिन्यू करेंगे। King Tut's demise was a big event. Even by royal standards, he was the last of his family's line. And his funeral was the death rattle of a dynasty. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear.
अगर राज परिवार की नजर से देखा जाए
तो भी किंग टट की जो डेथ थी वो एक बहुत बड़ी घटना थी। वो अपने परिवार का लास्ट हायर था, यानी लास्ट उत्तराधिकारी जिसे हम कहते हैं वो था, और इस तरह एक पूरे साम्राज्य का अंत हो गया था उसकी डेथ के साथ। यानी जैसे ही उसकी डेथ हुई वैसे ही जो उसकी फैमिली जहाँ रूल कर रही थी उस फैमिली का तो बिल्कुल खात्मा हो गया, तो वो पूरा साम्राज्य उसकी डेथ के साथ खत्म हो गया था। लेकिन उसकी डेथ कैसे हुई, उसके डेथ के बाद क्या इन्फ्लुएंस आया इजिप्ट पे, ये सारी बातें जो देखी जाए ना, ये जो फैक्चुअल बातें हैं ये अभी तक पता नहीं चल पाए हैं, ये बड़ी ही अनक्लियर हैं। तो साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, हर कोई इसमें कोशिश कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के रिसर्चर्स कोशिश कर रहे हैं ये बात जानने की कि उस टाइम फिर मिस्र में यानी इजिप्ट में हुआ क्या था। एमेनहोटेप III, टट्स फादर और ग्रैंडफादर, वाज अ पावरफुल फैरो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades एट द हाइट ऑफ 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज। हिज सन एमेनहोटेप IV सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड one of the strongest periods in the history of, चलिए स्टूडेंट्स पेज नंबर 26 पर आते हैं, ancient Egypt. The new pharaoh promoted the worship of Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten or servant of Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaten, known as Amarna. He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and losing his temples. It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. तो स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। टट के बारे में हम जान रहे हैं, टट एक बॉयश किंग है जिसकी ना जाने कैसे डेथ हो जाती है बहुत ही यंग एज में। उससे पीछे यानी उसके जो दादा परदादा हैं उनको भी अब हम थोड़ा सा इस चैप्टर में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो एमेनहोटेप III थे वो शायद टट के फादर थे या फिर उसके दादाजी थे। वो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे जिसने 18वें राजवंश की ऊंचाई पर लगभग 40 साल तक राज किया था। उनका बेटा एमेनहोटेप IV उनका उत्तराधिकारी बना था और उसने पुराने मिस्र में इतने बढ़िया राज्य की शुरुआत कर दी थी। नए फैरो ने जो वो सन की पूजा किया करते थे, सूर्य की आराधना चलती थी वहां पर, तो उन्होंने कर दिया था कि अब सभी सन की पूजा करेंगे, सन डिस्क की पूजा करेंगे जिसे मिस्र में कहते थे Aten, और उसने अपना नाम रख लिया था Akhenaten या फिर Akhenaten, जिसका मतलब है Aten का दास, यानी जो सन डिस्क है, सन है, सूर्य भगवान है, उनका दास हूं मैं, ऐसा उन्होंने नाम रख लिया था। और उन्होंने अपनी राजधानी को भी थेब से बदलकर Akhenaten तक ले गए थे, जिसे आज के टाइम पे अमारना के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसने देवता अमून का बहुत ज्यादा विरोध किया। पहले Aten से पहले अमून की पूजा होती थी, तो बहुत ज्यादा उसका विरोध किया, उसके मंदिर बंद करा दिए, मूर्तियों को तोड़कर उसने पूरे मिस्र को हैरान कर दिया था। After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Semekhkare appeared briefly and excited with hardly a trace. And then a very young Tutankhaten took the throne. King Tut, as he was widely known today, the boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw restoration of old ways. He reigned for about 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। अब स्टूडेंट्स, जो थेब्स नाम की जगह है वहां पर रिसर्च करते हुए शिकागो यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रे जॉनसन ने लग्जर रिसर्च सेंटर पर ये शब्द कहे थे कि पक्का था कि एक बहुत भयंकर समय रहा होगा, वो राजवंश जो मिस्र पर सदियों से राज करता आ रहा था अब उसका एंड होने वाला था, वो बस खत्म होने वाला था, और शायद इसी वजह से आखे नाटन जो है वो थोड़ा सा सनकी हो गया था, यानी उसके दिमाग में सनक चढ़ गई थी, क्योंकि उसे पता था कि अब उसका जो राजवंश है वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है। आखेनाटन की डेथ के बाद जो राजा थोड़े समय के लिए आया उसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है। उसकी डेथ के बाद बहुत ही छोटी सी एज में टट ने राजगद्दी संभाल ली। इस छोटी सी एज के राजा ने अपना नाम टूटन खाटेन से बदलकर टूटन खामून कर दिया। उसके नाम का मतलब था अमून देवता की जीती जागती प्रतिमा, यानी लिविंग इमेज ऑफ अमून, जैसा अमून है बिल्कुल वो ही है, यानी वो अपने आप को भगवान तुल्य समझने लगा था। उसने एक बार फिर से अपनी पुरानी परंपराओं को एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया, वही रीति रिवाज जो ये पहले निभाते आ रहे थे उन्हीं को ये दोबारा से ले आया। 9 ईयर्स तक इसने राज किया और उसके बाद इसकी अचानक से डेथ हो गई। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. How many? No one knows. The Egyptian Mummy Project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine, donated by National Geographic Society and Siemens, its manufacturer, King Tut is one of the first mummies to be scanned. In death, as in life, moving regularly ahead of his countrymen. अब अगर हम उसकी फेमस कितना है या उस पे लगाए गए अनुमानों पे ध्यान ना दें तो टट भी बहुत सारी ममीज में से एक ही है जो इजिप्ट में मिली है। वो कितनी ममीज है इनके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। 2003 में शुरू किए गए मिस्र की ममियों के खोज के प्रोजेक्ट के जो रिजल्ट आए हैं उसमें अभी तक 600 से ज्यादा ममियां खोज निकाली गई हैं और गिनती अभी भी चल रही है, यानी न जाने कितनी और ममी वहां पर दफन है। इसके जो दूसरा फेज आएगा उसमें जो राष्ट्रीय भूभाग सोसाइटी और सिमेंस है उन्होंने एक सीटी स्कैन की मशीन दी है जो ममियों की स्कैनिंग करने के यूज में आएगी। किंग टट की ममी वो पहली ममी है जिसका सीटी स्कैन किया गया। इस तरह से देखा जाए तो टट अपने लाइफ में भी और डेथ में भी अपने बाकी सारे काउंटर पार्ट से, यानी अपने बाकी सारे फैमिली के लोगों से बहुत आगे चल रहा था, क्योंकि उसने अपने लाइफ में भी बहुत जल्दी फैरो का खिताब पा लिया था, बहुत जल्दी वो राज करने लगा था और बहुत जल्दी उसकी डेथ भी हो गई थी, और फिर डेथ के बाद भी वो पहला ऐसा मम्मी बनी थी जिसका सीटी स्कैन किया गया था। A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1,700 digital X-ray images in cross-section. Tut's head, scanned in 0.62mm slices to register its intricate structures, takes on eerie detail in the resulting image. With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. उस दिन सीटी स्कैन मशीन से टट की मम्मी के सिर से पांव तक का स्कैन किया गया और उसकी लगभग 1,700 तस्वीरें उतारी गई। टट के सिर को 0.62mm के भागों में डिवाइड करके स्कैन किया गया और उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर था, या फिर उसके जो सिर का स्ट्रक्चर था उसको बहुत अच्छे से एनालाइज किया गया, क्योंकि ये बहुत ही मिस्टीरियस पिक्चर्स के रूप में सामने आया था। इसी तरह टट के सारे शरीर का बहुत अच्छे से एनालिसिस किया गया और रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक और एनाटॉमी यानी जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी विशेषज्ञ हैं उनके दल के जो सहारे इन सभी रहस्यों को जानने की कोशिश की गई कि टट की इतनी जल्दी डेथ कैसे हो गई और टट उस टाइम पे कैसा दिखता होगा, जिसके अनुसार परों वाले देवी देवताओं ने इतने लंबे समय तक उसकी दफन की गई मम्मी को सुरक्षित रखा था। यानी जो पहले मतलब लोग मानते होंगे इजिप्शियन लोग कि कोई परों वाला देवता है जो टट की मम्मी को या फिर सारी मम्मीज को बिल्कुल ठीक ठाक रखेगा, आफ्टर लाइफ में लेकर जाएगा, ऐसा मतलब वो बहुत प्रोटेक्शन रखेगा उनकी। तो अब ये जो साइंटिस्ट थे ये भी सोच रहे थे कि चलो इस मिस्ट्री को भी सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वो बिल्कुल सही है, ठीक ठाक है उसकी बॉडी या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स टट की डेथ लगभग 3300 साल पहले हुई है, आप खुद सोच सकते हैं कि इतनी पुरानी ये हड्डियां हो चुकी हैं तो इनका गलना तो स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छी पोजीशन में थी। लेकिन होवर्ड कार्टर की कुछ गलतियों से इसके थोड़ा सा सिचुएशन खराब हो गई थी, कंडीशन इतनी ज़्यादा भी ठीक नहीं रही थी। द नाइट ऑफ द स्कैन Workmen carried Tut from tomb in his box. Like pallbearers, they climbed up a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. The million-dollar scanner had quit because of sand in cooler fan. Curse of the Pharaoh, joked a guard nervously. जिस दिन टट की मम्मी का सीटी स्कैन किया जाना था उस दिन मजदूर उसको कब्र से बाहर लेकर आए। ताबूत को ले जाने वाले लोगों में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी की अर्थी लेकर आ रहे हो। वो रैंप पर चढ़े, वहां से सीढ़ियों पर चढ़े और फिर बाहर आ गए और उसके बाद एक हाइड्रोलिक लिफ्ट की हेल्प से स्कैनर के ट्रेलर तक उस मम्मी को ले जाया गया। अभी 20 मिनट बीते थे कि दो लोग दौड़ते हुए पास वाले एक ऑफिस में गए और वहां से दो वाइट कलर के प्लास्टिक के फैंस लेकर दौड़े दौड़े वापस आए। अब पता चला कि लाखों डॉलर के बने हुए स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि उसके कूलर के एक पंखे में रेत भर गया था। अब जो लोग थे वहां एक गार्ड खड़ा था, वो हंसी मजाक के वे में और थोड़ी से बेचैनी के वे में कहने लगा कि ये जरूर फैरो के अभिशाप की वजह से ही हुआ है। तो स्टूडेंट्स लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था कि वहां पर ये लिखा हुआ था टट की मम्मी के पास कि जो भी मुर्दे को तंग करेगा, उसे परेशान करेगा, उस पर कहर बरपेगा, अभिशाप वहां पर लगा हुआ था। तो अब लोगों के अंदर ये भी चिंता थी कि हम ये सब कर तो रहे हैं पर क्या पता वो अभिशाप, वो पाप हमें ना लग जाए। चलिए स्टूडेंट्स अब पेज नंबर 27 पर आइए। Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedure. After checking that no data has been lost, the technicians turned Tut over to the workmen who carried him back to his tomb. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. बदल कर लगाए जाने वाले ये पंखे काम को खत्म करने में सफल रहे, मतलब उनकी हेल्प से हो गया पूरी रूप से। जब उसका सारा काम हो गया, अच्छे से उसका सीटी स्कैन हो गया और टेक्नीशियंस को जब ये लगा कि अब और कोई काम बचा नहीं है, तो मजदूरों ने दोबारा से उस मम्मी को वापस उसकी कब्र में ले जाने का काम किया। कब्र से निकालकर बाहर लाने के 3 घंटे बाद अब फैरो दोबारा शांति से अपने उस ताबूत पर लेटा हुआ था जहां अब से लगभग 3300 साल पहले
उसका अंतिम संस्कार किया गया था या फिर जहां पर उसे दफनाया गया था लेटाया गया था। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टॉनिशिंग इमेजेस ऑफ टट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। Neck vertebrae appeared as clearly as in anatomy class. Other images revealed a hand, several views of the rib cage, and a transection of the skull. But for now, the pressure was off. Sitting back in his chair, Zahi Hawa smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. I didn't sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. अब ट्रेलर में वापस आने के बाद एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर में टट का एक बहुत ही अजीब या आप कह सकते हैं कि अद्भुत पिक्चर उसने बना ली कंप्यूटर पे। बिखरे हुए पिक्सल से सिर बनाया जिसे उस टेक्नीशियन ने सभी डायरेक्शंस में घुमाकर देखा। रीढ़ की हड्डी उतनी ही साफ देखी जा रही थी जितना कि एनाटॉमी क्लास में दिखाई जाती है। बाकी तस्वीरों में हाथ, पसलियां और खोपड़ी का एक हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। काम का तनाव अब काफी हद तक खत्म हो चुका था। जाही हवास अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। ऊपर से वो साफ साफ ये दिख रहा था कि हाँ ये संतुष्ट हो गया है क्योंकि सारा काम बहुत अच्छे ढंग से हो गया था। आखिर में वो बोला कि कल रात तो मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं सो सका था। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था, चिंतित था, लेकिन अब मैं आराम से सो सकूंगा। चलिए स्टूडेंट्स पेज नंबर 28 पर आइए। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड And the wind had stopped. The winter air lay cold and still, like death itself. In this valley of the departed, just above the entrance of the Toots tomb, stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. जब तक ये लोग ट्रेलर से उतरकर लोहे की सीढ़ियों से चढ़ते हुए रेत में पहुंचे, मतलब जहां रेगिस्तान था वहां पहुंचे, तब तक हवा रुक चुकी थी। अब वहां पर बहने वाली सर्दियों की हवा डेथ की इस घाटी में यानी मौत की इस घाटी में एकदम शांत थी। इस घाटी बिछड़ी हुई आत्माओं की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। तट की कब्र के जो एंट्रेंस गेट था उसके ऊपर ओरायन नाम का एक सितारा चमक रहा था जिसे मिस्र के लोग ओसायरिस की आत्मा भी मानते थे। और ओसायरिस कौन था? वो गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ था, यानी जब मर जाते हैं तो उसके बाद जो देवता हेल्प करता है वो था। और आज इस कब्र के ऊपर आकर वो इस दफन हुए छोटे बॉय किंग को देख रहा है, यानी वो जो ओरायन है वो उसे देख रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। हमने देखा कि कैसे ये पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है किंग टट को, जो एक बहुत ही छोटी एज में फैरो भी बन गए थे और बहुत ही छोटी एज में उनकी डेथ भी हो गई थी। हमने देखा कि कैसे उनकी मम्मी का फर्स्ट टाइम सीटी स्कैन हुआ। और स्टूडेंट्स इसमें आगे भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि उस टाइम क्या क्या फाइंडिंग्स हुए, जो आप नेट पे आसानी से देख सकते हैं। वहाँ आपको पता भी चल जाएगा कि किंग टट की लगभग एज क्या होगी जब उनकी डेथ हुई और उनकी डेथ का रीज़न क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर्स को देख लेते हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट क्वेश्चन 1। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उनके लिए रीजंस देने हैं। फर्स्ट, किंग टट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आप लिखेंगे द ममी ऑफ किंग टट हैज अर्नड वर्ल्ड वाइड फेम फॉर द ट्रेजर इट वॉज बरिड विद. देयर इज ऑल्सो स्पेक्यूलेशन अबाउट द मैनर ऑफ हिज डेथ एंड हिज एज एट द टाइम ऑफ डेथ. हैंस किंग टट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी. सेकेंड, होवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आप लिखेंगे होवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड बिकॉज ही यूज्ड अनसाइंटिफिक मेथड्स एंड इलेजिटिमेट वेज. ही वॉज फोकसिंग मोर ऑन ट्रेजर एंड लेस ऑन कल्चरल एंड हिस्टोरिकल आस्पेक्ट्स. थर्ड, कार्टर हैड टू चिजल अवे द सॉलिडिफाइड रेजिन्स टू रेज द किंग्स रिमेन्स. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आप लिखेंगे Carter found that the ritual resins had hardened. The result was that Tut's body has been cemented to the bottom of the solid gold coffin. Proper force could not move the resins. Even the scorching sun failed to loosen the resins. So he got the resins chiseled away to raise the king's remains. Fourth, Tut's body was buried along with Gilded treasures. तो इसका आंसर आप लिखेंगे The people of ancient Egypt believe in resurrection of the dead या फिर after life. Their kings were extremely rich, so Tut's body was buried with gilded treasures. Their eternal brilliance was meant to guarantee resurrection. Things of everyday use were also buried with king, like linen undergarments. And razor. Fifth, the boy king changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun. Iska answer aap likhenge? Tutankhamun means living image of Amun. He was a major god in ancient Egypt. King Amenhotep IV, who changed his name to Akhenaten, smashed the images of Amun and got his temples closed. Tut oversaw a restoration of the old ways. He changed his name to express his belief in Amun. Question 2, Part 1. List the deeds that led Ray Johnson to describe Akhenaten as Vaki. Ray Johnson ne Akhenaten ko Vaki yani Sanki kaha tha. Uske liye kya cheeze zimmedar hain? To iska answer aap likhenge. Akhenaten means the servant of Aten, that is, sun disk. He moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaten, now known as Amarna. He smashed the images of Amun, a major god, and closed his temples. These deeds led Ray Johnson to describe Akhenaten as Vaki. Second, what were the results of the CT scan? The results of the CT scan were quite encouraging. 1,700 digital X-ray images in cross-section were created. A gray head appeared on the screen. Neck vertebrae were quite clear. The image of hand, ribcage and skull were equally bright. These revealed that nothing had gone seriously wrong with Tut's body. Third, list the advances in technology that have improved forensic analysis. Iska answer aap likhenge, the advances in technology have helped in improving forensic analysis. Many scientific tests can be carried out to determine the causes of crime. These include X-ray, ultrasound, CT scan, postmortem, autopsy, and biopsy. All these help in diagnosis and provide exact information. Fourth, explain the statement. King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life. So, iska answer aap likhenge. King Tut's mummy was the first one to be x-rayed by an anatomy professor in 1968. On 5th January 2005, CT scan created virtual reality and produced lifelike images. King Tut is the first mummy to be scanned, thus in death as well as in life. Tut moved regularly ahead of his countrymen. Talking about the text. Discuss the following in groups of two pairs, each group in a group taking opposite points of view. So students, यहाँ कुछ आपके सामने sentences हैं जिन पर आपको discussion करना है. First, scientific intervention is necessary to unearth buried mysteries. तो यहाँ पूछा गया है कि क्या scientific intervention यानी science का use करना चाहिए हमें कुछ रहस्यों को कुछ राज को खोलने के लिए. Second, advanced technology gives us conclusive evidence of past events. जब technology जो है वो advance हो जाएगी वो अच्छे स्तर की होगी तो उससे हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिल जाएंगे जिससे हम कोई पास्ट के इवेंट्स यानी जो बीत चुके हैं इवेंट्स उनके बारे में कोई कंक्लूजन निकाल सके, कोई सही बात बता सके, कोई फैक्ट बता सके. क्वेश्चन 3, ट्रेडिशंस रिचुअल्स एंड फ्यूनरी प्रैक्टिसेस मस्ट बी रिस्पेक्टेड. पुराने समय के रीति रिवाज या जो अंतिम संस्कार के जितने भी तरीके आजमाए जाते हैं क्या उन सब की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन सब का आदर करना चाहिए. फोर्थ, नॉलेज अबाउट द पास्ट इज यूजफुल टू कंप्लीट आवर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन. जब तक हमें जो बीत चुका है उसके बारे में ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें इस बारे में ज्ञान नहीं होगा कि अभी हम कैसे रह रहे हैं, सही तरीका है क्या, हम मॉडर्न हैं या अभी भी हम पिछड़े हुए हैं, इस बारे में हमें पता नहीं चलेगा. तो स्टूडेंट्स, ये 4 सेंटेंसेस हैं आपके सामने, इनके ऊपर आपको डिस्कस करना है, इसके पक्ष में भी बात बोलनी है और इन बातों के विपक्ष में भी आपको बताना है. चलिए स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 29 पर आइए. थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, क्वेश्चन 1, रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लैंग्वेज बाय डेविड क्रिस्टल. डेविड क्रिस्टल ने द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लैंग्वेज करके एक आर्टिकल लिखा है, उसका थोड़ा सा पार्ट हमारे सामने है. इजिप्शियन इज नाउ एक्सटिंक्ट, इट्स हिस्ट्री डेट्स फ्रॉम बिफोर द 3rd millennium BC, प्रिजर्व्ड इन मैनी hieroglyphic inscriptions and papyrus manuscripts. Around the 2nd century AD, it developed into a language known as Coptic. Coptic may still have been used as late as the early 19th century and is still used as a religious language by monophysite Christians in Egypt. Second, what do you think are the reasons for extinction of languages? तो students, यहाँ पूछा गया है कि भाषाएं जैसे खत्म होती जा रही हैं, उनका आपको reason क्या लगता है कि ये क्यों खत्म हो रही हैं? जैसे आप काफी सारी लैंग्वेज देख सकते हैं, इजिप्शियन लैंग्वेज जो पहले की थी अब वो नहीं, ऐसी नहीं रही है. आप यहाँ अगर इंडिया में देखना चाहें तो आप हड़प्पन सभ्यता देखिए, आप सिंधु घाटी सभ्यता देखिए, उसमें जो लैंग्वेज यूज होती थी वो अब नहीं होती, अब हमें समझ में भी नहीं आता कि लिखा क्या हुआ है. तो ये सब क्यों होता है इसके बारे में डिस्कस कीजिए. थर्ड, डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व लैंग्वेजेस? क्या आपको ऐसा लगता है कि भाषाओं को प्रिजर्व करके प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए यानी उन्हें लुप्त नहीं होने देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बच्चों को नॉलेज होती रहनी चाहिए अगले जनरेशन से अगले जनरेशन, किसी भी लैंग्वेज को हमें लुप्त नहीं होने देना चाहिए. क्वेश्चन 4, इन व्हाट वेज डू यू थिंक वी कुड हेल्प प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स? तो बोली और भाषा इन्हें बचाने के लिए आप बताइए हम क्या क्या कर सकते हैं. वर्किंग विद वर्ड्स, फर्स्ट, गिवन बिलो आर सम इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स, एक्सप्लेन व्हाई दे हैव बीन यूज्ड टुगेदर. स्टूडेंट्स, नीचे कुछ कॉम्बिनेशन दिए गए हैं वर्ड्स के, अब आपको बताना है कि उन्हें एक साथ क्यों यूज किया गया है. Ghostly, dust, devils, तो ऐसा क्यों बोला गया है. स्टूडेंट्स, आप इन वर्ड्स को रीड कीजिए, उसके बाद आप देखिए कि इनमें मतलब क्या कॉमन है. जैसे ghostly, dust, devils, गोस्टली क्या हुआ, भूत वाला, डस्ट क्या है, रेत है, डेविल क्या है, यानी कोई बुरा इंसान या बुरा क्रिएचर। तो गोस्टली डस्ट डेविल यानी कोई तूफान आ रहा होगा रेत का, जिसे ऐसे बोला गया है। डेजर्ट स्काई, जैसे आसमान जो है वो बिल्कुल साफ हो, तो डेजर्ट स्काई होता है कि मतलब आसमान में रेत ही रेत हो, बिल्कुल उसके अलावा कुछ भी ना हो। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स यानी पुरानी ऐसी चीजें जिन्हें देख के इंसान चौंक जाए। फ्यूनरी ट्रेजर्स यानी जब कोई इंसान मर जाता है उसके साथ जो चीजें दफन की जाती हैं वो फ्यूनरी ट्रेजर हैं। साइंटिफिक डिटैचमेंट, साइंस से अलग होना। डार्क बैलेड क्लाउड्स यानी वो बादल जो बिल्कुल काले हैं, काले रंग के बादल हो चुके हैं, काली घटाएं जिन्हें हम कहते हैं। कास्केट ग्रे यानी ग्रेश कलर में जो हैं। एटर्नल ब्रिलियंस यानी वो इतने बढ़िया हैं जिसका कोई अंत नहीं है, मतलब तारीफ करते थक जाओगे लेकिन उसकी तारीफ आप कर नहीं सकते। रिचुअल रेजिंस जो लिक्विड वो मम्मी को प्रिजर्व करने के लिए उनके ऊपर लगाया करते थे उन्हें हम रिचुअल रेजिंस कहते हैं। वर्चुअल बॉडी, वर्चुअल बॉडी मतलब किसी भी नकली टाइप से बॉडी बनाना, जैसे सीटी स्कैन से जो बॉडी बनती है। सेकंड, हेयर आर सम कॉमनली यूज्ड मेडिकल टर्म्स, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स। तो यहाँ कुछ टर्म्स दिए गए हैं, आपको इनके मीनिंग्स डिक्शनरी से ढूंढ कर लाने हैं। ये टर्म्स है सीटी स्कैन, एमआरआई, टोमोग्राफी, ऑटोप्सी, डायलिसिस, ईसीजी, पोस्टमार्टम, एंजियोग्राफी, बायोप्सी। Things to do. Question 1. The constellation Orion is associated with the legend of Osiris, the god of afterlife. Chaliye students, page number 30 par aaiye. Find out the astronomical description and legends associated with the following. To students, Orion juda hua hai Osiris se. Osiris hai god of afterlife, yani maut ke baad ke devta. Unse juda hua hai Orion. To ab kuch aur aapke saamne diye gaye hain. एस्ट्रोनॉमिकल डिस्क्रिप्शन, अब आपको उनके साथ लेजेंड क्या है, उनके साथ क्या कथा जुड़ी है, उसे ढूंढ कर लाना है। पहला है उर्सा मेजर, जिसे हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं। फिर है पोलारिस, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। फिर है पेगासस, जिसे हम विंग्ड हॉर्स कहते हैं। फिर है सीरियस, जिसे हम डॉग स्टार कहते हैं। फिर है जेमिनाई, जिसे हम मिथुन कहते हैं। Second, some of the leaves and flowers mentioned in the passage for adorning the dead are willow, olive, celery, lotus, cornflower. Which of these are common in our country? So students, यहाँ कुछ आपको flowers के नाम पता चले थे, अब आपको ये देखना है कि हमारी country यानी India में इनमें से कौन से plants पाए जाते हैं। Question 3, name some leaves and flowers that are used as adornment in our country. हमारे देश में किसी को पहनाने के लिए जो माला बनाई जाती है फूलों की, वो लगभग किस किस फ्लावर से बनती है, उनके नाम आपको ढूंढने हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ये चैप्टर है डिस्कवरिंग टट, द सागा कॉन्टिन्यूज। इसको हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है, साथ ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन और उनके आंसर भी डिस्कस कर लिए हैं। अब आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ना है और एक्सरसाइज में दिए गए सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से करने हैं। बाय बाय।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।